The transcendent God is infinitely exalted above his universe.
La tabdil khuda jo hai wo aasmanon par sarbuland hai ya sarfaraz hai.
He is also immanent, dwelling in it.
Aur wo sukoonat karta hai.
So God is not absent.
Khuda jo hai wo kahin bhi ghair hazir nahi hota.
He is present in his world by his omnipresence.
वो अपनी दुनिया में अपनी बनाई हुई दुनिया में अपनी मौजूदगी के जरिए से मौजूद होता है।
God is with believers in a higher sense.
और खुदा जो है वो ईमानदारों के साथ रहता है।
He is with us in grace and in salvation.
वो फजल के साथ निजात में हमारे साथ मौजूद होता है।
This is Matthew 1 verse 23. Matthew 1 verse 23.
फिर आ जाए अपनी काम करके
खुदा हमारे साथ
yes
the us whom God is with here is his believing elect people
तो यहां पर जो लफ्ज साथ तर्जमा किया गया है खुदा हमारे साथ तो ये दरअसल ये इसी बात को जाहिर करता है कि खुदा ईमानदारों के साथ है
In the Old Testament, God was with his people, especially in certain places.
और पुराने अदामे में भी लोग खुदा जो है अपने लोगों के साथ मौजूद था बिलखसूस खास हालात में
He was with his people in the Garden of Eden.
जैसा कि हम बागेदन में पढ़ते हैं
In paradisical, sinless fellowship.
और जहां पर गुनाह नहीं था और खुदा अपने लोगों के साथ रफाकत रखता था
He was with Israel in the land of Canaan.
और वो कनान की सरजमीन में इसराइल के साथ था
Which flowed with milk and honey.
जहां दूध और शहद की नहरें बहती थी
He was with his people, especially in the city of Jerusalem.
और वो खास तौर पर यरूशलेम में यानी जो खुदावंत का शहर कहलाता है वहां अपने लोगों के साथ मौजूद था
The holy city, the city of the great king.
ये जो है ये अजीम शहर था जहां बादशाह रहता था
God was with his people even in the land of Egypt whence he redeemed them.
और हत्या के खुदा मिस्र में भी खुदा अपने लोगों के साथ था जब वो मिस्र की गुलामी में थे
For 40 years in the wilderness, he was with them.
और जब 40 साल वो बियाबान में आवारा फिरते रहे तो भी खुदा उनके साथ था
Especially when he opened up the Red Sea and then closed it.
और जब खुदा ने बहरकुजम में से उनको पार किया तब भी खुदा उनके साथ था
God was with Israel at Mount Sinai at the giving of the law.
और खुदा तब भी अपने लोगों के साथ था और बिलखसूस मूसा के साथ जब वो खुदा से शरीयत लेने के लिए कोह सीना पर मौजूद था
Even in the Babylonian captivity, Jehovah was with his people.
और जब खुदा के लोग बाबली असीरी में थे तब भी यहोवा खुदा जो है अपने लोगों के साथ था
He was a little sanctuary to his church.
और वो जो है उनके लिए एक मकदस था एक मकदस था
That's Ezekiel 11 verse 16
Ezekiel
11 verse 16
11 बाब 16वीं आयत
Jehovah was also with his people through theophanies
और यहोवा खुदा जो है वो अपने इजहार के जरिए जो है वो लोगों के साथ मौजूद था यानी जब वो उन पर जाहिर होता था
Theophanies are appearances of God in various manifestations and forms.
और थियोफनी असल में जो है वो इलाहियाती इस्तलाह है जो यीशु मसीह के लिए उसकी पैदाइश से कबल इजहार के लिए इस्तेमाल की जाती है यानी जिस तरह आपने कल या परसों पाक फरिश्ते के बारे में पढ़ा था तो ये उसके इजहार की अलामत है
God appeared with fire and clouds.
खुदा जो है वो आग में जाहिर हुआ और बादल में जाहिर हुआ
He appeared with holy angels and great glory.
और वो फरिश्तों के साथ हासिल हुआ और बड़े जलाल के साथ हासिल हुआ
In his theophanies we behold him in his royal court.
और जब उसके इस इजहार में हम उसकी कामे अदालत को देखते हैं
Or in his regal chariot.
और उसके रथों को देखते हैं
Or adorned with resplendent clothing.
और हम उसकी पोशाक को देखते हैं
Some of these theophanies appearances of God
कुछ जो खुदा के इजहार हैं
Are Christophanies appearances of Christ.
वो यीशु मसीह का ही इजहार है यानी अपनी पैदाइश से कबल
Especially when we read of God's face.
जब हम खास तौर पर जब हम खुदा के चेहरे की बात करते हैं
Or when God appears in the form of a man.
या जब हम देखते हैं कि पुराने आदनामे में कुछ शख्स आदम जात की मानत जाहिर हुआ
Sometimes even as a warrior with a great sword.
और या एक जंगजू के तौर पर जिसके हाथ में तलवार है
That's Christ in the Old Testament.
और जब हम ये बातें पढ़ते हैं पुराने अहदनामे में तो समझ लीजिए कि वो यीशु मसीह है.
God was with his Old Testament people through his official representatives.
और खुदा अपने लोगों के साथ मौजूद था एक बाकायदा नुमाइंदे के तौर पर.
The prophets were God's mouthpieces.
और खुदा के नुमाइंदे वहां पर कौन थे? खुदा के नबी.
The priests were his holy ones.
और इसी तरह से काहिन भी खुदा के नुमाइंदे थे.
The kings were to rule in his name.
और बादशाह जो थे वो उसी के नाम में वहां पर हुकूमत करने वाले थे.
God was with his people in the Old Testament by mighty acts.
और खुदा पुराने अहदनामे में बड़े बड़े काम और अजीब अजीब काम करने के जरिए से अपने लोगों के साथ,
including military victories,
और खासतौर पर जंगी फतुहात में,
and astounding miracles,
और मौजज़ा दिखाने में,
by dreams and visions,
ख्वाबों और रयाओं के जरिए,
by the pillar of cloud and the pillar of fire,
आग और बादल के सतून के जरिए,
by altars and sacrifices,
मज़बा और कुर्बानियों के जरिए,
God was with them by types and shadows.
तो खुदा जो था वो मुख्तलिफ जो है वो अलामात और मिसलों के साथ उनके साथ मौजूद था.
The Old Testament especially refers to two important structures.
पुराना नामा जो है वो दो बुनियादी खाकों को पेश करता है.
By which God showed Himself present with Israel.
के खुदा इस्राएल के साथ मौजूद था.
Jehovah dwelt in a movable tabernacle of curtains.
और उसकी निशान उसका निशान क्या था कि खुदा खैमा इस्तेमाल में अपने लोगों के साथ रहता था.
And later in a stationary temple of great stones.
और फिर बाद में एक बड़ी हैकल में जिसे पत्थरों से बनाया गया.
Unlike most of the ways God was with his people in the Old Testament.
और ज्यादातर हम यही देखते हैं कि पुराने अहदनामे में खुदा अपने लोगों के साथ था.
His presence in the tabernacle or temple was not brief.
खैमा इस्तेमाल में या हैकल में उसकी जो मौजूदगी होती थी वो मुख्तसर नहीं होती थी.
Not even for a few decades.
या कुछ अरसे के लिए नहीं थी.
The tabernacle of Moses,
जो मूसा का खैमा इस्तेमाल था.
The temple of Suleiman,
जो सुलेमान की हैकल थी.
The temple of Zerubbabel,
और जो जरुबाबल की हैकल थी.
Each lasted for about 400 or 500 years.
वो 400-500 साल रही.
God was especially there in that building.
और खुदा उनके जरिए अपने लोगों के.
And in the holy of holies.
और जो कुदूस खुदा है.
The most sacred chamber of the tabernacle or temple.
और उसके अंदर जो पाक तरीन मकाम होता था.
God dwelt upon the ark of the covenant.
और खुदा खैमा इज्तिमा में अहद के संदूक पर जो कि पाक तरीन मकाम में था वहां उसकी हुजूरी मौजूद होती थी.
The ark is referred to in scripture as God's throne.
और जो अहद का संदूक है वो खुदा के तख्त को जाहिर करता है पुराने अहद में.
The omnipresent God ruled from that seat.
और जो हर जगह मौजूद हमाजा जो खुदा है यानी हर जगह मौजूद होने वाला खुदा वो उस जगह से अपने लोगों पर हुकूमत करता है.
The ark is also called God's footstool.
और इसी तरह से जो अहद का संदूक है वो खुदा के पांव की चौकी है.
How can one structure be a throne and a footstool?
ये कैसे मुमकिन है कि तख्त भी वही हो और पांव की चौकी भी.
The idea of the footstool is that God dwells in heaven.
तो इसका जो इसके पीछे ख्याल है वो ये है कि चूंकि खुदा आसमान पर है तो आसमान उसका तख्त है.
And as it were, his feet stretched to the earth.
और उसकी जो जमीन जो है उसके पांव की चौकी है.
These are only anthropomorphic images.
और ये जस जो है ये सिर्फ एक जो है खाका है तस्वीर है समझने के लिए.
To teach weak people like us that God is everywhere ruling.
ताकि हम जैसे कमजोर लोग ये समझ सके कि खुदा हर जगह हुकूमत करता है.
God was with his people in the Old Testament scriptures, that book.
और खुदा की मौजूदगी हमें पुराने अहदनामे की किताबों में नजर आती है.
The law and the prophets.
मूसी शरीयत में शरीयत की किताबों में पांच किताबों में और नबूती किताबों में.
The words of promise and wisdom.
और इसी तरह से हिकमत की किताबों में.
God's presence was mediated through the Old Testament sacraments.
और इसी तरह से हमें पुराने अहदनामे की कुर्बानियों में या सैक्रामेंट्स में जो पुराने अहदनामे में इस्तेमाल होते थे उनमें नजर आती है.
Circumcision and Passover.
खतवे में और फसा में.
God was with his people as they sang the inspired psalms.
और इसी तरह से मज़ामीर में जो कि खुदा के इल्हाम से हैं.
For God inhabits the praises of his people.
और इसी तरह से लोग जब खुदा की तारीफ करते हैं उसमें खुदा की मौजूदगी नजर.
That's Psalm 22 verse 3.
ज़बूर 22 उसकी तीसरी आयत.
God was with his people in their prayers and worship.
और खुदा उनकी दुआओं और इबादत में मौजूद होता था।
And in the daily walk of faith.
और उनकी रोजमर्रा जो ईमान की जिंदगी थी उसमें भी खुदा की मौजूदगी जो है
थी। Remember Enoch and Noah who walked with God.
हनोक और नूह को याद रखें जो खुदा के साथ साथ चलते थे।
That's our calling too.
और ये हमारी भी जो है वो हमारा भी बुलावा है कि हम भी खुदा के साथ साथ चलें।
In short, the Old Testament scriptures are filled with Jehovah being with His people Israel collectively.
और मजमूई तौर पर या मुख्तसर तौर पर पुराने अहदनामे का यानी पुराने अहदनामे में यहोवा खुदा अपने लोगों इसराइल के साथ जो है मजमूई तौर पर मौजूद है।
Or His being in their midst or middle.
या उसकी जो जात है हस्ती है वो उनके दरमियान मौजूदगी रखती है।
We read of this time and time again in Deuteronomy and the Psalms.
और ये बार-बार बात जो है हम इस्तिस्ना में और ज़बूरों में पढ़ते हैं।
And in the major and minor prophets.
और अंबियाए असगर और अंबियाए अकबर की किताबों में।
We read that God was with individual saints in the Old Testament.
और फिर हम ये भी देखते हैं कि खुदा इंफरादी तौर पर लोगों के साथ था।
Abraham, Isaac, Jacob, Joseph.
अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ।
Moses and Joshua.
मूसा और यशुआ के साथ।
Gideon and Samuel.
और जदून और सैमुअल के साथ।
David and interestingly Jeremiah.
और दाऊद के साथ और यिर्मयाह के साथ।
He needed God with him because he had the battle against the false prophets.
क्योंकि वो खुदा उनके साथ था क्योंकि वो जो झूठे नबी थे उनके खिलाफ जो है वो जंग करते थे।
And then there is to crown it all.
इसी तरह से तवारीख में
The prediction of Isaiah 7 verse 14. Isaiah 7 verse 14.
Isaiah nikale app se dikha do just a minute. So this is only a New Testament.
Okay.
Chal bhai.
Isaiah 7 verse 14.
Isaiah
7 verse 14.
Okay. लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी।
So Emmanuel means God with us.
So Emmanuel का मतलब है खुदा हमारे साथ।
This passage is not saying that God is going to be with someone in the future.
और इसका मतलब ये नहीं है इसका कि खुदा मुस्तकबिल में किसी के साथ होगा।
It refers to a person who is God with us.
इसका मतलब यह कि अभी इसी वक्त खुदा हमारे साथ है।
So the son of the virgin will be God.
और जो कुमारी से पैदा होने वाला लड़का है वो खुदा है।
And he will be God with us.
और वही खुदा जो है वो हमारे साथ होगा।
Apart from Emmanuel,
और इससे अलावा इसके अलावा
God couldn't be with any fallen descendant of Adam or Eve.
यीशु मसीह के अलावा खुदा कभी भी आदम की जो गुनाह आलूदा जिसमें यानी जिसकी सृष्टि में गुनाह उनके साथ नहीं होता।
For that would be inconsistent with his righteousness and holiness.
क्योंकि अगर यीशु मसीह के जरिए खुदा हमारे साथ नहीं है यानी यीशु मसीह खुदा नहीं है तो फिर खुदा हम जैसे नाराजों के साथ कभी ना होता।
When did Isaiah make this amazing prophecy?
और यीशु जो ये जबरदस्त पेशगोई करता है।
Some 700 years before the birth of Jesus.
यीशु मसीह की पैदाइश से 700 साल पहले।
7 centuries.
7 सदियां पहले।
So we come to the fulfillment of this prophecy in our Savior.
और हम इस पेशगोई को यीशु मसीह में पूरा होता देखते हैं।
It is not merely that a holy man is with us.
यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि पाक आदमी जो है यानी जो पाक लोग हैं वो हमारे साथ हैं।
Or that a great prophet is with us, like John the Baptist.
या ये नहीं कहा गया कि बड़ा कोई अजीम नबी हमारे साथ है जिस तरह यूहन्ना इस्तबागी।
It's better than having an angel with us.
या ये नहीं कहा गया कि कोई बड़ा फरिश्ता जो है वो हमारे साथ है।
Or being attended by a pillar of cloud or fire.
और ये भी नहीं कहा गया इस तरह पुराने अदामे में हमें आग और बादल का सतून नजर आता कि वो हमारे साथ है।
Or even having a theophany in this room, which is only ever temporary.
और ना ही कोई ऐसा खुदा का इजहार है जो सिर्फ इस हॉल में थोड़ी देर के लिए हो।
God is with us in the Son of God.
जो speak again.
God is with us in the Son of God.
खुदा हमारे साथ है ये उसके बेटे के जरिए से है।
Who is God the Son?
जो कि खुदा का बेटा ही है।
And in him the whole triune God is with us.
और यीशु मसीह के जरिए खुदा सालूस जो है यानी बाप बेटा और रूह कुदस ये तीनों हमारे साथ मौजूद होते हैं।
God is with us as weak human beings.
اور خدا ہمارے ساتھ ہے, ہم کمزور انسانوں کے ساتھ خدا موجود ہے.
Elect believing men and women and children.
جو جن لوگوں کو, جن مردوں, خواتین اور بچوں کو خدا نے برگزیدہ کیا ہے, خدا ان کے ساتھ ہے.
For Christ saves his people from their sins.
اور مسیح یسوع نے ان کو ان کے گناہوں سے کیا کر لیا ہے, بچا لیا ہے, چھڑا لیا ہے.
God is with us on earth.
خدا ہمارے ساتھ اس زمین پر ہے.
As a man.
ایک انسان کی طرح.
For verily he took not on him the form of an angel.
کسی فرشتے کی صورت میں نہیں.
But he took on him the seed of Abraham.
بلکہ وہ ابراہیم کی نسل سے آیا, یعنی یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ.
That's Hebrews 2 verse 16.
عبرانیوں 2:16.
This is the reason for the Bible's anthropomorphic language about God.
اور یہاں پر جو ہے جو زبان استعمال کی گئی ہے اسے کہا جاتا ہے انتروموفک, یعنی ایسی چیز جو انسانی الفاظ میں بیان کی جائے, یعنی خدا کے بارے میں انسانی الفاظ کا استعمال کرنا.
For God himself is invisible, infinite, transcendent. To see him would be to die.
اور خدا جو ہے ہم سب کو پتا ہے کہ بے پایا ہے, خدا جو ہے وہ لا انتہا ہے, اور خدا نادیدہ ہے, ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے, کیونکہ اگر ہم اسے دیکھ لیں گے تو ہم زندہ نہیں رہیں گے.
The Lord Jesus is called God's face.
اس لیے یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا چہرہ ہے.
He is the arm of the Lord.
وہ خدا کا بازو ہے.
He is the hand of God.
وہ خدا کا ہاتھ ہے.
For in him God became a man.
اور یسوع مسیح میں خدا انسان بنا.
For Jesus is God with us.
اس لیے خدا ہمارے ساتھ ہے یسوع مسیح کے ذریعے.
Jesus, God with us, is the fulfillment of Old Testament prophecy and types.
یسوع مسیح جو ہے وہ پرانے عہدنامے کی تمام پیشگوئیوں اور علامات کی تکمیل ہے.
He is the fulfillment of the tabernacle.
وہ خیمہ اجتماع کی تکمیل ہے.
For the word was made flesh and tabernacled among us.
اور جو خدا کا کلام ہے وہ مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا, خیمہ اجتماع کی طرح.
That's John 1 verse 14.
یوحنا 1:14.
He is also the fulfillment of the temple.
وہ حیکل کی بھی تکمیل ہے.
For Jesus spoke of the temple of his body in John 2 verse 21.
اور یوحنا دوسرے باب میں اس نے اپنے بدن کو حیکل کہا ہے.
Here in Matthew 1,
متی پہلے باب میں,
the first chapter of the New Testament,
جو کہ پہلا باب ہے نئے عہدنامے کا,
Jesus Christ is God with us as the fulfillment of the Old Testament promise and pledge.
اور یسوع مسیح جو ہے وہ خدا ہمارے ساتھ ہے, جو کہ وعدے کی تکمیل ہے جو پرانے عہدنامے میں کیا گیا تھا.
The fulfillment of Old Testament prophecy and predictions.
اور یہ ان پیشگوئیوں کی تکمیل ہے جو پرانے عہدنامے میں کی گئی.
And even the fulfillment of Old Testament genealogy and descent.
اور یہ سب کی تکمیل ہے جس کے بارے میں پرانے عہدنامے میں نسب ناموں کا استعمال کیا گیا ہے.
For Jesus Christ, Emmanuel, God with us,
یسوع مسیح میں, یعنی خدا ہمارے ساتھ,
is the son of David.
وہ داؤد کی نسل سے ہے.
And David's Lord.
اور داؤد کے خدا سے.
He is the seed of Abraham.
وہ ابراہیم کی نسل سے ہے.
And in him all nations are blessed.
اور اس کے وسیلے سے, یسوع مسیح کے وسیلے سے, تمام قومیں برکت پاتی ہیں.
He's the son of Adam.
وہ ابن آدم ہے.
That is the son of man.
جو کہ ابن آدم, یعنی آدم کا بیٹا ہے.
For Adam means man.
یعنی آدم کا مطلب ہے انسان.
He's the son of Adam and the last Adam.
وہ ابن آدم بھی ہے اور آخری آدم بھی ہے.
1 Corinthians 15 verse 45.
پہلا کرنتھیوں 15 باب.
Matthew 1 makes it very clear.
جو متی کی انجیل ہے وہ ہم پر واضح طور پر بیان کرتی ہے.
That Jesus Christ is God with us right at the very start of his earthly existence.
تو یسوع مسیح جو ہے وہ خدا ہمارے ساتھ ہے اپنی زمینی موجودگی سے, زمینی موجودگی سے ہی.
So we must understand Christ's 33 years on earth like this.
اور پھر ہم یسوع مسیح کی 33 سال زندگی پر غور کرتے ہیں.
God is with us as an infant and a child.
اور یسوع مسیح جو ہے وہ کس طرح کامل طور پر ہمارے ساتھ ہے.
God was with us as a teenager and an adult.
اور جب یسوع مسیح بچہ تھا تب بھی خدا اس کے ساتھ تھا, جب وہ بڑا ہوا تب بھی اس کے ساتھ تھا, جب وہ اس سے بھی بڑا ہوگا تب بھی اس کے ساتھ تھا.
He is God with us on the cross, dying for our sins.
اور جب وہ صلیب پر تھا تب بھی اس کے ذریعے خدا ہمارے ساتھ.
God with us at his resurrection and ascension into heaven.
اور جب وہ جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا تو اس کے ذریعے بھی خدا ہمارے ساتھ.
God with us as he rules at God's right hand.
اور جب اب کہ وہ داہنے ہاتھ خدا کے بیٹھا ہے تب بھی خدا, وہ اس کے ذریعے سے خدا ہمارے ساتھ ہے.
And finally, God with us at the second coming on the clouds of heaven.
और जब तब भी खुदा हमारे साथ है जब यीशु मसीह दोबारा बादलों पर हमारे लिए आएगा.
Thus there is no adoptionism.
तो इसमें किसी तरह की भी कोई ऐसी बात नहीं है जिसे इख्तियार किया जाए.
Jesus didn't become God at some point during his life.
यीशु मसीह अपनी जिंदगी के किसी मरहले पर खुदा नहीं बना.
Say it as baptism or resurrection or ascension.
यानी अपने बपतिस्मे पर या अपने जी उठने पर या आसमान पर सवार फरमाने से.
As the Son of Man,
इब्ने आदम,
who was God with us throughout all his time on earth,
जितनी देर वो रहा यानी खुदा हमारे साथ,
Jesus Christ deals with our original sin.
यीशु मसीह ने उस सारे मामले के लिए यानी खिदमत की जिसे हम जाती कसूरवारी कहते हैं. जाती कसूरवारी का मतलब है जो गुनाहों का एहसास हमें होता है उसे जाती कसूरवारी कहा जाता है.
In which we were conceived and born.
जिसमें यानी जिसके बारे में ज़बूर 51 में बयान किया गया कि हम सब गुनाह में पैदा होते हैं.
Jesus Christ deals with our sins of youth.
और फिर हमारी जवानी की खताएं.
As David calls them in Psalm 25, verse 7.
जिसके बारे में ज़बूर 25 में दाऊद कहता है कि मेरी जवानी की खताओं को जो है माफ कर या मेरे ज़िम्मे ना लगा.
And he also addresses our many sins as adults.
और इस तरह जब हम बड़े होते हैं तो और गुनाह करते हैं.
Christ is with us after and through our deaths.
यीशु मसीह ना सिर्फ अब हमारे साथ है यानी खुदा हमारे साथ है बल्कि हमारी मौत के बाद भी वो हमारे साथ और हमारा खुदा है.
Remember David's comforting confession.
दाऊद के इकरार पर जो है वो गौर करें.
Though I walk in the valley of the shadow of death,
हाँ मैं मौत के साए की वादी में से गुजरूं,
I will fear no evil,
मैं नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है.
For thou art with me. Jesus Christ is God with us forever.
यीशु मसीह यानी जो खुदा हमारे साथ है वो हमेशा तक है.
In heaven after we die,
जब हम मर जाएंगे और आसमान पर जाएंगे.
And in the new heavens and the new earth, world without end.
और जब नया आसमान और नई जमीन होगी जिनका कोई इख्तिताम नहीं होगा तब भी वो हमारे साथ है.
For his divine and human natures are joined together.
उसकी इंसानी और जो इलाही फितरत है वो यकसा है यानी साथ साथ है.
Indivisibly and inseparably.
और वो नाकाबले तौर पर यानी जुदा नहीं की जा सकती और ना वो तकसीम की जा सकती है.
This is the creed of Chalcedon of 451.
और ये 421 का खल्क़ीदूनी अकीदा है जिसका ये हवाला दे रहे हैं.
Written in Turkey over 1500 years ago and relevant today.
और ये 1500 साल पहले जो है ये लिखा गया और जो हमारे चर्च की वेबसाइट है उस पर ये उर्दू ज़बान में मौजूद है.
We could say that there are four great doctrinal truths.
और यहाँ एक बड़ी अजीम जो है वो सच्चाई है.
That are found near the end of Matthew 1 and read earlier.
और अभी जो हमने पढ़ी है जो मत्ती की इंजील में.
Number one.
पहली बात.
Christ's virgin birth.
मसीह की कुमारी मरियम से पैदाइश.
Two, Christ's incarnation.
फिर मसीह का तजस्सुम.
His being Emmanuel, God with us.
के उसके जरिए खुदा पैदा हुआ तो उसका मतलब है खुदा हमारे साथ है.
Three, his name Jesus.
और फिर तीसरी वजह उसका नाम यीशु.
Fourth, his salvation.
उसकी निजात.
For he shall save his people from their sins.
वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा.
Now I want to show you their relationship.
अब मैं इसके दरमियान ताल्लुक को जाहिर करता हूं.
How each is related to Christ's incarnation as God with us.
कि किस तरह ये मसीह के तजस्सुम को जाहिर करते हैं कि यीशु मसीह खुदा है.
First consider his virgin conception and birth.
सबसे पहले इस बात पर गौर करें कि उसकी पैदाइश किस तरह हुई कुमारी मरियम से.
This is a great wonder, utterly unique.
और ये बिल्कुल मुनफरद और अजीब बात है.
But it points to a far greater wonder.
लेकिन इससे भी बढ़कर
The incarnation.
उसका तजस्सम है. तजस्सम कहते हैं खुदा का जिस्म इख्तियार करना तजस्सम कहलाता है.
Christ was born of a virgin because
यीशु मसीह इसलिए कुमारी मरियम से पैदा हुआ.
It points to his being God with us.
क्योंकि ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो खुदा हमारे साथ.
Then there is his name Jesus.
फिर उसका नाम यीशु.
Jesus is the Greek form of the Hebrew name Joshua.
तो जो लफ्ज यीशु है वो जो इब्रानी नाम है यशुआ उसकी यूनानी शक्ल है या यूनानी हालत है.
It means Jehovah salvation.
इसका मतलब है यहोवा की निजात.
And only one who is absolutely divine.
इसका मतलब है कि जो बिल्कुल इलाही है,
God with us,
खुदा हमारे साथ,
can be called Jehovah salvation.
तो उसी के बारे में कहा जा सकता है कि यहोवा हमारी निजात.
Third, we come to Christ's salvation.
फिर हम यीशु मसीह की निजात की तरफ आते हैं.
He had to be personally God with us.
और वो शख्सी तौर पर चूंकि खुदा है तो इसलिए खुदा हमारे साथ है.
In order to bear the infinite wrath of God against our sins on the cross.
और वही इस लायक है क्योंकि वो कामिल है तो इसलिए वही इस लायक है कि वो खुदा के गजब को बर्दाश्त कर सके.
And there at Calvary,
और सलीब पर,
one who is God with us was forsaken of God.
और वही जो खुदा हमारे साथ है हमारे लिए वहां पर छोड़ा गया.
मेरे खुदा
तूने मुझे क्यों छोड़ दिया.
He no longer felt or experienced that God was with him.
और उसने ये तजुर्बा किया कि खुदा उसके साथ नहीं है.
He felt and experienced that God was not with him but against him.
उसने ये जाना कि खुदा उसके साथ है बल्कि उसके खिलाफ है वहां पर.
That was because he bore our iniquities.
और ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने हमारी जो खताएं थी अपने हमारे गुनाह थे अपने ऊपर लिए हुए थे.
And he was forsaken of God.
और वो खुदा का छोड़ा हुआ था.
That we would never be forsaken by God.
इसलिए ताकि खुदा हमें कभी ना छोड़े.
But that he would be with us forever.
ताकि वो हमेशा हमारे साथ रहे.
This beloved is the message.
अजीजो ये आज का पैगाम है.
The message of the prophet Isaiah.
ये यशायाह नबी का पैगाम है.
The message of the dream God gave Joseph.
ये वो ख्वाब है जो उसने यूसुफ को दिया.
The message of the angel who spoke to Joseph in the dream.
और वही जो यहाँ पर हवाला है मत्ती में कि कैसे उसने फरिश्ते ने ख्वाब में दिखाई देकर यूसुफ को कहा.
The message of Matthew who penned our first gospel.
और ये पैगाम मत्ती का पैगाम है जिसने इसे लिखा.
And this beloved is the gospel.
और मेरे अजीजो ये इंजील है.
The gospel preached by the Christian church.
और ये वो इंजील है जिसे मसीह कलीसिया सुनाती है.
And the gospel witnessed to by every believer, young and old.
और ये वो इंजील है जिसे जिसकी हर कोई शख्स चाहे वो जवान है या बूढ़ा वो इसकी गवाही देता है.
But is Jesus God with us after his ascension into heaven?
और जब यीशु मसीह आसमान पर सऊद फरमा गया तो भी खुदा हमारे साथ है.
How can he be God with us when he's no longer on earth?
अब वो कैसे हमारे खुदा उसके यानी वो कैसे हमारे साथ है जबकि वो अब जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर है.
Christ explains this to his apostles in the upper room.
यीशु मसीह ने बालाखाना में अपने शागिर्दों से फरमाया.
In John 14 through 16.
यूहन्ना 14 और 16 में.
Basically the answer is this.
जवाब इसका ये है.
Jesus Christ is God with us by the Holy Spirit.
अब यीशु मसीह अपने पाक रूह के जरिए से कुछ के जरिए से हमारे साथ है.
Let us read one key portion from John 14.
Okay.
John 14 verses 16 through 18.
John 14
verses 16 through 18.
Okay. और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है. तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा. मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा. मैं तुम्हारे पास आऊंगा.
Jesus tells us that we are not orphans.
यीशु मसीह हमें बताता है कि हम जो है वो यतीम नहीं है.
He says that he comes to us through the Holy Spirit.
वो हमें कहता है कि वो रूह कुदस के वसीले से या जरिए से हमारे पास आएगा.
God is with us in Jesus Christ and by the Holy Ghost.
खुदा यीशु मसीह के जरिए से हमारे साथ है रूह कुदस के वसीला से.
He is with us in the covenant of grace.
वो फजल के अहद में हमारे साथ है.
Remember the covenant formula.
इसलिए अहद को याद रखें.
I am your God and you are my people.
और खुदा का अहद क्या है कि मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा और तुम मेरे लोग होगे.
And I will be to you everything that a God should be to you.
और जो कुछ यानी खुदा ने हमारे लिए किया तो हम उसके लोग होंगे और हम वो हमारा खुदा होगा.
This new covenant was established in the blood of Emmanuel.
और ये नया अहद जो है ये किसके जरिए कायम किया गया? इमानुएल यानी खुदावंद यीशु मसीह के खून के जरिए से.
The covenant is God with us in fellowship and friendship.
और ये अहद किस तरह होता है? दोस्ती और शराकत के जरिए से.
God is with us in the church.
خدا ہمارے ساتھ اپنی کلیسیا میں ہے.
Because we're the people of God.
کیونکہ جہاں خدا کے لوگ ہیں.
And the body of Jesus Christ.
اور جہاں یسوع مسیح کا بدن ہے.
And the temple of the Holy Spirit.
اور جہاں روح القدس کا مقدس ہے.
God is with us through the means of grace.
جو خدا ہمارے ساتھ ہے وہ فضل کے وسائل میں ہے.
Through the chief means of grace, the preaching of the word.
جس میں منادی شامل ہے.
And the two Christian sacraments of baptism and the Lord's Supper.
اور اس میں دو ساکرمنٹ شامل ہیں جنہیں ہم پاک بپتسمہ اور باکشلا کہتے ہیں.
And God is with us in inspired scripture.
اور خدا ہمارے ساتھ اپنے کلام کے ذریعے سے, یعنی بائبل مقدس کے ذریعے,
both the Old Testament and the New Testament.
پرانے اور نئے نامے کے ذریعے سے.
These are the words of the one who sits on the throne.
یہ اس کی طرف سے ہیں جو تخت پر بیٹھا ہے.
These are the words of eternal life.
اور یہ وہ ہے جس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے.
God is with us in prayer.
خدا ہمارے ساتھ دعا کے ذریعے ہے.
As we seek his face through Jesus Christ.
اور جب ہم اس کے چہرے کو دیکھنے کے طالب ہوتے ہیں دعا کے ذریعے.
And pour our hearts out before him.
اور جب ہم اپنے دلوں کو خدا کے حضور میں انڈیل دیتے ہیں.
And all of this, beloved,
اور یہ سب کچھ میرے عزیزوں,
is only through faith or believing alone.
اور یہ سب کچھ اس کے ذریعے سے ہے, صرف اور صرف ایمان رکھنے کے ذریعے سے یسوع مسیح پر.
For faith is the only way of knowing God in Christ.
کیونکہ ایمان ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم یسوع مسیح کو جانتے ہیں.
By faith alone God is with us.
اور صرف ایمان کے ذریعے ہی خدا ہمارے ساتھ ہے.
By faith alone God is in us.
اور ایمان کے ذریعے ہی خدا ہمارے اندر ہے.
By faith alone God is for us.
اور صرف ایمان کے ذریعے ہی خدا ہمارے لیے کام کرتا ہے.
And so by faith in Jesus Christ through the Holy Spirit.
اور صرف یسوع مسیح پر ایمان کے ذریعے روح القدس کے وسیلہ سے.
We see the omnipresent and imminent God.
اور پھر ہم خدا کی جو ہے وہ موجودگی کو دیکھتے ہیں.
We see him in creation and providence.
ہم تخلیق میں اور خدا کی پروردگاری کے کاموں میں خدا کو دیکھتے ہیں.
In the world around us and in ourselves.
دنیا میں اور ہمارے اندر.
We behold the hand of our heavenly father.
ہم اپنی زندگیوں میں خدا کے ہاتھ کو دیکھتے ہیں.
The speech of the eternal and incarnate word.
اور اسی طرح سے اس کلام کو دیکھتے ہیں جو ہمارے لیے مجسم ہوا.
And the fingers of the Holy Spirit.
اور اس طرح سے روح القدس کی انگلیوں کو دیکھتے ہیں, یعنی کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں.
This is great comfort for us.
یہ ہمارے لیے عظیم اور بڑی تسلی ہے.
Because we were once without God in the world.
کیونکہ ہم اس سے پہلے ہم خدا کے بغیر تھے.
That's Ephesians 2 verse 12.
افسیوں 2:12 میں
God says, I will never leave thee nor forsake thee.
اور خداوند ہم سے فرماتا ہے کہ میں تمہیں کبھی نہ چھوڑوں گا, نہ تم سے کبھی دستبردار ہوں گا.
He has also promised that nothing can separate us from his love in Christ Jesus.
اور وہ ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہمیں اس کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی.
This is Romans 8 verse 35. Romans 8 verse 35. Okay.
کون ہے مسیح یسوع, ہاں کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا, مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار.
And verses 38 and 39.
کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خدا مسیح یسوع میں ہے, اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی, نہ زندگی, نہ فرشتے, نہ حکومتیں, نہ حال کی, نہ استقبال کی چیزیں, نہ قدرت, نہ بلندی, نہ پستی, نہ کوئی اور مخلوق.
For God's covenant bond with us,
اس لیے خدا کا جو عہد کا تعلق ہے وہ ہمارے ساتھ ہے,
in Jesus Christ and by the Holy Spirit,
یسوع مسیح کے ذریعے روح القدس کے وسیلہ سے,
is unbreakable and indissoluble.
اور یہ نہ کبھی ختم ہوگا اور نہ اسے توڑا جا سکتا ہے.
Just as unbreakable and indissoluble,
جسے اس طرح اسے ختم نہیں کیا جا سکتا اور نہ اسے توڑا جا سکتا ہے,
as the unions of the two natures in Jesus Christ.
یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح مسیح یسوع میں دو فطرتیں, یعنی الہی فطرت اور انسانی فطرت, اور ان کو جدا یا تقسیم نہیں کیا جا سکتا.
What about the eschatological future for us?
اور پھر اس میں ہمارے لیے آخری, یعنی زمانے سے متعلق کیا پیغام ہے, یعنی آخرت میں کیا ہوگا.
At Christ's return,
مسیح کی آمد سے,
we shall be clothed with glorious resurrection bodies.
ہمیں جلالی بدن ملیں گے.
And so shall we ever be with the Lord.
اور ہم ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے, خداوند کے ساتھ رہیں گے.
That's 1 Thessalonians 4 verse 17.
और पहला तसल्लीकियों 4:17 में लिखा हुआ है ये.
And what about the new heavens and the new earth?
और नए आसमान और नई ज़मीन के बारे में हम क्या जानते हैं?
Revelation 21 verse 3. Revelation 21 verse 3. This passage says three times that God will be with us in the new heavens and the new earth. Revelation 21 verse 3.
Amen. Yes.
All this is rich encouragement for the church.
और ये हमारे लिए यानी बतौर कलीसिया बड़ी हौसला अफजाई है.
And you need encouragement.
और आपको हौसला अफजाई की जरूरत है.
This encourages the church in her preaching and witnessing.
और ये हमें मनादी करने में और गवाही देने में मदद देती है.
Think of Emmanuel's promise at the Great Commission.
और खुदा हमारे साथ है इसे इरशाद आजम में देखें.
God with us, Emmanuel, Matthew 1, the first chapter.
मत्ती की इंजील के शुरू में हमने देखा खुदा हमारे साथ.
The Great Commission given by Emmanuel in Matthew 28, the last chapter.
और इसी तरह से मत्ती 28 बाब में जब यीशु मसीह ने इरशाद आजम जब हम यीशु मसीह का इरशाद आजम को पढ़ते हैं तो ये किसकी तरफ से है खुदा हमारे साथ यानी जो इमानुएल है खुदा हमारे साथ.
And what is the basis for the Great Commission to go out and preach the gospel?
और इरशाद आजम की बुनियादें क्या हैं?
Lo, I am with you always.
और यीशु मसीह क्या कहता है मैं अब से लेकर हमेशा तक तुम्हारे
even on to the end of the age.
यानी इस जमाने के आखिर तक या इस दुनिया के आखिर तक.
Is anyone here suffering?
So हमारी जो तकलीफ है.
I am with you, says God.
खुदा फरमाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ.
These were Jesus' words to Paul in Acts 18 verse 10 when he was suffering.
और जब पौलुस जो है वो दुख में से गुजर रहा था माल 18:10 में तो यीशु मसीह के ये अल्फाज हैं कि मैं तेरे साथ हूँ.
Are you passing through hardships?
क्या आप मुश्किलात में से गुजर रहे हैं?
When you pass through the waters,
जब आप पानियों में से गुजरेंगे,
I will be with you.
मैं तुम्हारे साथ हूँगा.
When you pass through the fire,
जब हम आग में से गुजरेंगे,
I will be with you.
खुदा हमारे साथ होगा.
That's Isaiah 43.
ईसा 43 में बाब.
Are you weak?
क्या आप कमजोर हैं?
Who is it?
कौन नहीं है?
We have a great high priest who cannot be touched. We do not have a great high priest who cannot be touched with the feeling of our infirmities.
और इब्रानियों में लिखा है कि हमारे पास जो है अजीम सरदार काहिन है बड़ा सरदार काहिन जो हमारी कमजोरियों में क्या है हमारी कमजोरियों को समझता है.
Our great high priest is Emmanuel, God with us.
हमारा अजीम सरदार काहिन कौन है? यीशु मसीह जो हमारी सारी मजबूरियों को मुश्किलात को समझता है.
What is our calling that flows from all this?
और इस सब से हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है या हमारा बुलावा क्या है?
So much could be said here.
यहाँ पर बहुत कुछ कहा जा सकता है.
I'll give just a few points.
मैं सिर्फ चंद नकाज आपके सामने पेश करूंगा.
If God is with us in Emmanuel,
अगर खुदा इमानुएल के जरिए यानी खुदा हमारे साथ है यीशु मसीह के जरिए से,
we must walk with him each day.
तो फिर लाजम है कि हर दिन हम उसके साथ चलें.
If the Holy God is with us in Jesus Christ,
अगर पाक खुदा यीशु मसीह के जरिए हमारे साथ है,
then we must be holy.
तो फिर लाजम है कि हम भी पाक हों.
This is 2 Corinthians 6 verses 16 and 17. 2 Corinthians 6 verses 16 and
17.
Here especially is one sin that puts God far from us.
और एक गुनाह जो है कोई भी गुनाह जो है खुदा से दूर कर सकता है.
Pride.
तकब्बुर का गुनाह.
When we think that we are something, God withdraws.
और जब हम समझते हैं कि हम कुछ हैं, यानी हम कोई बड़ी चीज हैं, तो खुदा हमसे क्या हो जाता है? जुदा हो जाता है.
That grieves the Holy Spirit who moves away from us as
it were. और ये रूह कुछ को रंजीदा करता है जो फिर हमसे दूर हो जाता है.
Isaiah says that God dwells.
यसाया फरमाता है कि खुदा हमारे साथ है, ये सुकूनत करता है.
With him who is humble.
खुदा जो है वो फरोतरों के साथ है.
The one of a contrite spirit.
जिनके अंदर आजजी का रूह है.
And as we end our conference today.
और आज हम इस कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम.
And some of you have very long journeys home.
और आपने फिर लंबा सफर भी करना है अपने घरों की तरफ.
I heard for some 12 hours by road.
और मुझे पता चला कि कम से कम 12 घंटे लग जाते हैं.
Remember on your trip that God is with you.
तो याद इस सारे सफर के दौरान ये बात याद रखें कि खुदा हमारे साथ है.
And he is with you always.
और वो हमेशा हमारे साथ रहेगा.
Even unto the end of the age.
इस जमाने या इस दुनिया के आखिर तक वो हमेशा हमारे साथ है.
Amen. Amen.